नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मलेशिया के लोगों के बीच परस्पर गहरे संबंधों पर बल दिया। कुआलालंपुर में कल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ करेंगे बातचीत। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय निर्यात पर शुल्क घटकर 18% हुआ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ कृषि और एमएसएमई सहित कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। मध्य सूडान में अर्धसैनिक समूह के ड्रोन हमले में 8 बच्चों सहित 24 लोगों की मृत्यु। इस्लामाबाद में एक मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा, रूस ने यूक्रेन के 2 बिजली संयंत्रों सहित ऊर्जा केंद्रों पर हवाई हमले किए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर आज मलेशिया पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। कुआलालंपुर में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने भारत और मलेशिया के बीच आपसी और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के दिलों को जोड़ने वाला एक जीता जागता सेतु बताया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ अपनी पुरानी मित्रता का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया ने वर्ष 2024 में अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है।
Our relationship with Malaysia is scaling new heights each year. In 2024, during the visit of Prime Minister Anwar Ibrahim to New Delhi, we elevated our ties to a comprehensive strategic partnership. Today, we walk hand in hand as partners towards progress and prosperity.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मलेशिया में 100 से ज्यादा भारतीय आईटी कंपनियां काम कर रही हैं, जिससे हजारों नौकरियां सृजित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई शीघ्र ही मलेशिया में शुरू कर दी जाएगी।
ओवर 100 इंडियन आईटी कंपनीज ऑपरेट इन मलेशिया जनरेटिंग थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स। द मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल is paving new pathways for our digital collaboration. I'm happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon.
हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी कल मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में हुए बड़े बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है, रक्षा निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है और देश का फिनटेक इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम्स में शामिल है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के लिए कई अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने बताया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की सुविधा अब 6ठी पीढ़ी तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही भारत में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए तिरुवल्लुवर छात्रवृत्ति शुरू की जाएगी और मलेशिया में एक नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का पहला दिन सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाले संदेश के साथ संपन्न हुआ। दौरे के दूसरे दिन प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जिनमें व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर।
सरकार ने आज कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते से वस्त्रों, परिधानों और तैयार उत्पादों के लिए 118 अरब डॉलर का वैश्विक आयात बाजार खुल गया है। इससे वस्त्र निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
वस्त्र मंत्रालय ने व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के बीच वस्त्र व्यापार संबंधों को मजबूत करने में एक प्रमुख प्रोत्साहन बताया। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जहां लगभग 10.5 अरब डॉलर का निर्यात होता है। इसमें लगभग 70% परिधान और 15% तैयार उत्पाद शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि सभी वस्त्र उत्पादों पर 18% पारस्परिक शुल्क से भारत अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की तुलना में स्थिति में होगा। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि देश के वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस समझौते की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय निर्यातों के लिए भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के अंतर्गत 50% पारस्परिक शुल्क को अब घटाकर 18% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली में आज भारत अमेरिका के संयुक्त बयान पर श्री गोयल ने कहा कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम सहित पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का शुल्क कम है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब मात्र 18% लगेगी। और 18% जितने देश हैं जिनके साथ हमारा पर्दा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आज प्रथम महिला श्रीमती वैरोनिक हार्मनी के साथ मुंबई पहुंचे। सेशल्स के राष्ट्रपति ने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की और बाद में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित भारत सेशल्स व्यापार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मध्य सूडान में आज एक अर्धसैनिक समूह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस द्वारा किए गए ड्रोन हमले में एक वाहन पर सवार विस्थापित परिवारों के 8 बच्चों सहित 24 लोगों की मृत्यु हो गई। सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने बताया कि यह हमला उत्तरी कोर्दोफान प्रांत के रहाद शहर के पास हुआ। डॉक्टरों के समूह ने कहा कि उत्तरी कोर्दोफान के डुबईकर क्षेत्र में चल रही लड़ाई से भागकर आए विस्थापित लोग वाहन में सवार थे। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच पूरे देश में सत्ता संघर्ष शुरू होने के कारण सूडान में अप्रैल 2023 से अराजकता फैली हुई है। पाकिस्तान में कल राजधानी इस्लामाबाद में एक मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। यह हमला शहजाद टाउन इलाके में स्थित तरलाई इमामबाड़ा में हुआ। इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर रात्रि में बड़े हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले में 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 अलग अलग तरह की मिसाइलें शामिल थीं। इनके निशाने पर देशभर में स्थित पावर ग्रिड, उत्पादन सुविधाएं और सबस्टेशन शामिल थे। रूस ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिमहल ने कहा कि हमलों में 2 बिजली उत्पादन केंद्रों के साथ साथ बिजली वितरण प्रमुख लाइनें और उप विद्युत केंद्र भी प्रभावित हुए। ये हमले ऐसे समय हुए जब तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान था। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों के लिए प्रचार के दौरान हिंसा जारी है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के बीच कुश्तिया, भोला, टेकनाफ और राजशाही में हुई झड़पों में कम से कम 26 लोग मारे गए। झिनाइदह और गाजीपुर में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, जमात इस्लामी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के कई चुनाव कार्यालयों और प्रचार शिविरों में तोड़फोड़ की गई। टेकनाफ में BNP के एक प्रचार अभियान के दौरान हुई गोलीबारी में कथित तौर पर बच्चों सहित 5 लोग घायल हो गए। एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में ओलंपियन इलावेनिल वलावरेन ने जापान की मिसाकी नोबाटा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं शांभवी शेख सागर ने एशियन जूनियर फाइनल में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 2026 की जूनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाए रखते हुए प्रतियोगिता के 4th दिन 10 स्वर्ण पदक जीते। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मलेशिया के लोगों के बीच परस्पर गहरे संबंधों पर बल दिया। कुआलालंपुर में कल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ बातचीत करेंगे। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते से भारतीय निर्यात पर शुल्क घटकर 18% हुआ। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इससे रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषि और MSME सहित कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। मध्य सूडान में अर्धसैनिक समूह के ड्रोन हमले में 8 बच्चों सहित 24 लोगों की मृत्यु। इस्लामाबाद में एक मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की का दावा, रूस ने यूक्रेन के 2 बिजली संयंत्रों सहित ऊर्जा केंद्रों पर हवाई हमले किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।